الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورة النور آیت نمبر 35 سے 40 تک کریں گے. آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا. استیزان کی آیات کے تستانیسو کا لفظ جس میں آیا تھا کہ آپ جس کا روٹ ہے انسیت، انس، مانوس ہونا. تو مطلب کیا تھا اس کا کہ کسی سے مانوس ہونا یا اس کو مانوس کرنا، یعنی کوئی بھی آپ ایسا کام کریں جس سے گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ دروازے پہ فلاں شخص اندر آنے کی اجازت چاہ رہا ہے. اور بعض دفعہ گھر والے ہی ہیں اگر وہ، تو کھنکارنے سے یہ مطلب حاصل ہو جاتا ہے. بعض دفعہ بولنے سے یا السلام علیکم کہنے سے، جو گھر والے ہی ہیں جنہوں نے، جن کو گھر میں آنے کے لیے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن وہ بھی اس طرح سے کر کے ایک طرح سے مطلع کر دیں، مانوس کر دیں گھر والوں کو. اور باقی جو لوگ ہیں وہ لوگ تو باقاعدہ اجازت لیں گے. بیل بجانا بھی صرف اجازت نہیں ہے، باقاعدہ وہ اجازت بھی لیں گے کہ وہ آ جائیں، سلام بھی کریں گے، گھر والوں کو اطلاع بھی دیں گے کہ میں کون ہوں. اگر وہ نہیں اس کو ظاہر ہے جانتے پہچانتے یا نہیں، اس کی آواز سے مانوس نہیں ہے، تو وہ ان کو آپ بیل بھی کریں گے، آپ پھر اس کے بعد وہ کھولیں گے تو سلام بھی کریں گے اور پھر اجازت بھی لیں گے. اور کون سے گھروں میں بغیر اجازت کے ہی آپ جا سکتے ہیں، وہ اپنی آدمی کے لیے اپنی بیوی کا گھر ہوتا ہے یا عورت کے لیے اپنے شوہر کا گھر. جو باقی گھروں میں، چاہے وہ بہن بھائیوں کے گھر ہوں، چاہے رشتہ داروں کے گھر ہوں یا دوستوں کے گھر ہوں، کتنے بھی آپ ان کے ساتھ فرینک ہیں، لیکن اس میں بھی اجازت لے لینی چاہیے. یہ نہیں کہ دروازہ کھول کے اور کھنکارتے ہوئے اور سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہو جائیں، وہ صرف آپ اپنے گھر میں جائیں گے اس طرح. پھر اس کے بعد ہم نے نظر بازی کو دیکھا کہ وہ بھی زنا کا دروازہ کھولتی ہے اور شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. تو اس میں بھی ایک ایکسیپشن صرف یہ ہے کہ آدمی اپنی جہاں پہ رشتہ ڈالنا ہو وہاں پہ اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ ایسے ہی دیکھنا کسی کو بھی یہ جائز نہیں ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ عورتیں اپنی زینت کا اظہار کریں. اب ہم عورتوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ زینت کیا کیا ہوتی ہے، کن چیزوں میں زینت ہوتی ہے، سوائے وہ زینت جو کہ خود بخود ظاہر ہو جائے. اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون سی زینت خود بخود ظاہر ہو جاتی، جیسے آپ کا جلباب ہے، اگر وہ کبھی اڑ گیا ہوا سے، بڑی چادر آپ نے لی ہوئی ہے، یا پھر آپ کا جو فگر ہے تھوڑا پتہ چل جاتا ہے، آپ کی چال ڈھال ہے، آپ کا قد کاٹ ہے، یہ خود بخود ظاہر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ساری چیزوں کو چھپانا ضروری ہے. یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ سوائے ہاتھ اور چہرے کے، تو ہاتھ اور چہرے میں بھی یہ ہے کہ یہ اس صورت کے اندر جب آپ کی یعنی زینت نہ لگی ہو. اور دوسری ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ زینت ہی تو چہرہ ہی تو زینت ہے، تو اس لیے اس کو بھی چھپایا جائے. دوسرا، میں نے آپ کو یہ جو چہرے کے پردے کا، بہت زیادہ خواتین اس کا سوال کرتی ہیں، تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کے اندر دو چیزیں، دو رائے پائی جاتی ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ لازمی ہے، تو وہ بھی سارے ہی ائمہ کرام کہتے ہیں اور سوائے امام ابو حنیفہ کے، وہ کہتے ہیں کہ لازم نہیں ہے، مگر ہاں جہاں فتنہ ہو وہاں پہ چہرہ بھی چھپائے. ٹھیک ہے، تو بعض جگہ پہ فتنہ نہیں ہوتا لیکن غیر محرم ہے. مثال کے طور پہ اتنے کوئی بوڑھے ہیں، شوہر کے چچا ہیں، کوئی ایسے ماموں ہیں یا شوہر، یعنی شوہر کے، یا ایسے ہیں کوئی لوگ، تو اتنا زیادہ ان کے سامنے کوئی फितने का अंदेशा नहीं है आपको, तो वहां पे आप चेहरा बगैर मेकअप के, बगैर जीनत के खोल सकते हैं। जीनत तो छुपानी ही छुपानी है, अगर मेकअप लगा तो वो तो सारे ही गैर महरमों से छुपाना है। लिहाजा जो हमने ये आज समझा हुआ ना कि हम ये स्कार्फ ऊपर सर पे लपेट लेते हैं और ये हमारा पर्दा हो गया, तो नहीं, ये सिर्फ सतर कवर हुआ, ठीक है। अगर हम कहते हैं ना कि हम बड़े पारसा हैं क्योंकि हम स्लीवलेस नहीं हम पहनते जी, हम हाफ स्लीव नहीं पहनते, हम फुल स्लीव पहनते हैं, तो हम बड़े पारसा और पूरा पर्दा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये आप सिर्फ सतर छुपा रही हैं अपना। अगर आप कहती हैं कि आप ऊंची शलवारें नहीं पहनती हैं और इस वजह से आप यानी पर्दा कर रही हैं, तो ये पर्दा नहीं है, ये सिर्फ आप सतर छुपा रही हैं। इसी तरह सर को भी, बालों को यानी छुपाना, इनको कवर करना, ये तो जाहिलियत में भी औरतें करती थी, तो हमें तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये पर्दा, अगर यही पर्दा रिक्वायर्ड था तो फिर इतनी आयतें की क्या जरूरत थी, तो पहले ही वो औरतें करती थी। खेमार तो है ही सर का पर्दा। अब जहां तक उसके अलावा है तो सर को भी कवर करना है और जिलबाब से अपने पूरे कपड़ों को भी कवर करना है। और अगर आप बहुत ही कहीं गुंजाइश समझते हैं कि कहीं गुंजाइश निकल सकती है, तो उतना चेहरे को अनकवर करना कि जब आप मेकअप में नहीं हो। और हम शादियों में तो पूरा फुल मेकअप भी लगा लेते हैं, कपड़े भी पूरे जीनत वाले होते हैं, इतनी जीनत, इतने चमकते दमकते होते हैं, और ऊपर बस स्कार्फ ले लेते हैं और हम सोचते हैं हम पूरे हिजाब बने। कई दफा तो लड़कियां या औरतें इतनी उसमें ज्यादा बल्कि खूबसूरत लगना शुरू हो जाती हैं। तो ये तो जीनत छुपाना नहीं, ये तो बल्कि और जाहिर करना है। अब ये एक तर्जुमा इतना तो सबको आता है, वला युबदीना जीनत हुन्ना, इसका मतलब क्या है? आपको कुछ और मतलब समझ आता है तो फिर आप अपने लिए और देख लें। और ये कि ये जीनत सिर्फ किन के सामने आप खोल सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं, वो भी पूरी लिस्ट बता दी गई, इतनी लंबी लिस्ट दी गई। तो अब हमें ये लगता है कि अगर हमने ये ना किया तो फिर फायदा क्या मेकअप का, फिर फायदा क्या अगर लोगों का ना दिखाया तो ये देख लें कि फिर अल्लाह ताला ने इसको फलाह के साथ जोड़ दिया कि ये आपके पास होने के लिए ये जरूरी है, कामयाबी के लिए ये जरूरी है। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाए, इसे तौबा कर लो, यानी पलट आओ, ये छोड़ दो, ये चीजें ये छोड़ोगे तो कामयाब हो सकते हो। वरना अगर किसी ने फेल होने का खुद से इरादा कर ही लिया है कि मैंने फेलियर ही होना, तो फिर उसकी मर्जी है। बाहर क्या, ये औरतों के लिए खास तौर पे, औरतें नमाज वगैरह भी कर लेती हैं, रोजा भी कर लेती हैं, जिक्र इसकार भी कर लेती हैं, मर्दों से ज्यादा वो इसके अंदर वो मतलब ज्यादा अपने एक्टिव हैं, मस्जिदों में भाग भाग के जाती हैं। लेकिन इस जगह पे आके खवातीन जो है ना वो बिल्कुल परवाह नहीं करती, और ऐसे लगता है कि जैसे उनको पता ही नहीं कि ये भी अहकाम कुरान में दिए गए हैं। लिहाजा इन चीजों को सामने रखना चाहिए और इस चीज का ख्याल करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम इस चीज को इग्नोर कर दें और ये सोचें कि ये आए ही नहीं है कामात। तो अब आप लोगों को सबको देखना चाहिए कि आप अपनी अपनी जगह पे किस हद तक इसके ऊपर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम जिस जगह पर आप हैं उससे एक स्टेप तो आगे जाए ना। देखिए, आप बाज खवातीन कहती हैं हम कैसे जिलबाब करें जॉब्स के ऊपर, तो बात यही है कि देखिए जिलबाब नहीं कर सकते तो कोई बड़ा कोट पहन सकते होंगे, कुछ ऐसे कर सकते होंगे। अगर वो भी नहीं करने की, कोई यूनिफॉर्म ही है आपकी जॉब पे, तो फिर भी अल्लाह ताला को बेहतर पता है। अब मैं तो इसमें नहीं कुछ कह सकती, लेकिन अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि आपकी क्या मजबूरी है ना, आप किस हद तक आप कुड़ते हैं, और क्या जॉब से निकलते ही आप अपना जिलबाब पहन के फिर गाड़ी में आते हैं, और उसके बाद थ्रू आउट आप ग्रोसरी के लिए, शादियों के लिए, दावतों के लिए जिलबाब पहने रखते हैं, या आप कहते हैं बस ये जी जॉब पे तो मेरी मजबूरी है, तो बाकी जगह पे क्या है, बाकी जगह पे भी क्या मजबूरी है? नहीं ना, तो फिर इस चीज को समझना चाहिए। अगर आप कुछ और नहीं भी कर सकते, बहुत ही आपको मुश्किल है, तो एटलीस्ट जब आप मेकअप करके बाहर निकलती हैं तो तब अपने चेहरे को ढांप लिया करें। जब मेकअप नहीं किया हो तो चलो तब इतनी सी गुंजाइश निकल सकती है कि आप खोल लें, लेकिन जिलबाब तो है ही, वो तो लाजमी है, वो तो आप नहीं कर सकते कि आपने जी मैंने इतने फैंसी कपड़े नहीं पहने हुए, या मैंने लूज पहने, यहाँ पे लूज और टाइट की तो बात ही नहीं। और आगे सूरह अहज़ाब के अंदर इसकी मजीद वजाहत भी आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि कुरान पाक में कहाँ हुक्म है कि पर्दा करना चाहिए, ये इन्होंने खुद ही बनाया हुआ। तो ये खुद देख लें कि आपके सामने है कि कान किस किस के सामने जीनत जाहिर कर सकते हैं, उसकी लिस्ट अब सामने आ गई है, तो उसके बाद किसी ने तो नहीं खुद लिख ली ना ये आयतें। और ये अल्लाह का कलाम है, सारी बातों को छोड़ के एक बात अगर इंसान ये समझ जाए कि मेरी अकल और मेरी समझ और मेरा इल्म ज्यादा है या अल्लाह ताला का, इतनी बड़ी बात मुझे कहनी पड़ रही है, इसे तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए ना, लेकिन इतनी बड़ी बात कहनी पड़ रही है कि किसका इल्म ज्यादा है, अल्लाह ताला का ऑब्वियसली, और उसने अपने इल्म से ये अहकामात दिए हैं, तो फिर बहस की क्या बात इसमें रह जाती कि हम बहस करें कि नहीं जी ये ऐसे तो वो वैसे और नहीं ऐसे नहीं और ये नहीं है और क्या करें और फिर ऐसे कैसे चल सकता है और वो ही कैसे हो सकता है, ये चीजें तो फिर बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। जब आपको ये पता चल गया कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, तो उसके बाद फिर कहाँ से आप कुछ बात गुंजाइश निकाल सकते हैं, ठीक है, तो बहसों की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि अपने में से जो बेनिकाहे हैं उनका निकाह कर दिया करो, यानी जब किसी को रिश्ता मुयस्सर भी हो और ये भी पता है कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, यानी आदमी उसको अफोर्ड कर सकता है, उसको इतनी समझ है इतनी अकल है कि वो इस चीज को निभा सकता है, तो फिर वो शादी कर ले, इसके अंदर देर नहीं करनी चाहिए। अगर वो कुछ उसके पास फकर भी है कुछ तंगी भी है, तो अल्लाह ताला उसको गनी कर देगा, अल्लाह की मदद होती है ऐसे लोगों के साथ जो सिर्फ पाक दामन रहने के लिए निकाह करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं सोच के कि वो आएगी तो एक रोटी वो भी खाएगी और उसके कपड़ों का भी खर्चा होगा और उसकी इन चीजों का भी खर्चा होगा, फिर वो मेकअप भी मांगेगी, फिर वो ज्वेलरी भी मांगेगी, तो उसका कहाँ से लाऊंगा, लिहाजा जो है मैं शादी ना करूं, तो ये नहीं, अल्लाह ताला गनी कर देगा। और हमें ये हदीस भी पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन चीजों में जल्दी करा करो, जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज अदा करने में, जब जनाजा तैयार हो तो उसको दफन करने में, यानी जो फौत हो जाए तो ये ना इंतजार करें कि अब फलां आ जाएगा तो फिर हम कफन दफन करेंगे, या फलां का इंतजार कर दो और फलां का कर लो, और या फिर जुमे का दिन आएगा तो फिर जुमे पे जुमे की नमाज में ज्यादा लोग होंगे लिहाजा उस वक्त ही हम नमाज जनाजा पढ़ें और उस वक्त ही दफनाएं, नहीं जल्दी करो इसमें। और तीसरी चीज कि जिसकी निकाह की उम्र पहुंच गई हो, रिश्ता भी मुयस्सर हो, तो उसके निकाह में देर ना करो, यानी जब बेनिकाहे नहीं होंगे लोग तो मुआशरे में बदकारी कम होगी, ठीक है, और खास तौर पे आज का वो दौर है जहां पे हर एक के हाथ में बेहयाई का गैजेट है, ये सेलफोन, ऐसे मुआशरे में बच्चों को बेनिकाह रखना ऐसे ही है कि आप उनको गुनाह के लिए खुला छोड़ रहे हैं, इसलिए कि ना इस पे कोई सेंसरशिप है, ना इस पे कोई पाबंदी है, ना आप इसको बच्चों के हाथों से ले सकते हैं। तो अपनी प्रायोरिटी में तीन चार चीजें रखें कि जो मेरी टॉप प्रायोरिटी है, जिन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मैं कर सकती, और रियलिस्टिक आप अपनी रिक्वायरमेंट्स या डिमांड्स रखें, ऐसे अनरियलिस्टिक ना रखें, तो वो बस दो तीन चीजें जो पूरी हो जाए तो वहां पे शादी कर दें। अब ये नहीं कि अब ये बाकी चीजें ठीक है जी, खानदान बहुत बड़ा, बाकी चीजें ठीक है जी, रहता हमसे बहुत दूर है, हम मेरे करीब ही हो तो फिर ही हम करेंगे, नहीं, जब दीन और अखलाक अच्छा हो तो फिर फरमाया उसकी शादी कर दो, ठीक है, ये नहीं कि अब जी रंग सांवला है, अब जी कद छोटा है, अब जी इसकी फैमिली बहुत बड़ी है, अब इसके ऊपर बहनों की जिम्मेदारी है, इसके ऊपर ये है, ये दूर रहता है, अब हमारी बच्ची हमारे से कब मिलने आएगी, इस तरह की चीजें नहीं, ऐसी रिक्वायरमेंट्स रखनी चाहिए, बल्कि दीन के लिहाज से अखलाक के लिहाज से अच्छा रिश्ता मिल जाए तो फिर देर ना करें, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन में फसाद हो जाएगा, और फसाद आप देख ही रहे ना कितना हो रहा है, फरमाया हदीस में आता है कि ये चीजें मिल जाएं फिर भी नहीं अगर आप रिश्ता करते ना, तो फितना और फसाद होगा जमीन में, तो यानी आज देखें कि कितनी हद तक क्या हो चुका है और ये कैसी बेराह रवी की चीजें आजकल आम हुई हैं। और अल्लाह ताला ने वाकई जो अहकामात दिए हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, ये अगर हम नहीं मानेंगे तो हम अपना हिस्सा इस सारी चीजों में डाल रहे हैं जो कि आज दुनिया के अंदर बदकारियां और जिना और आंखों का जिना और हाथों का जिना और कानों का जो भी हो रहा है ना, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा हमारा हिस्सा भी पड़ता जा रहा है, हम भी इस जुल्म के में शरीक हो रहे हैं। आंखों के जिना के लिए हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, कानों के जिना के लिए हम कुछ बातें ऐसी करते हैं, हाथों पैरों के जिना के लिए हम ऐसे बेपर्द होके फिरते हैं, तो फिर हाथों पैरों के जिना भी होते हैं। तो डिफरेंट चीजें जो डिफरेंट जराइम है वो बेपर्दगी की वजह से, बेनिकाह रखने की वजह से। और अभी कल ही किसी ने मुझे मैसेज किया कि कोई एक उनके सामने कोई बात आई है कि कोई 11 साल की बच्ची के साथ किसी ने रेप कर लिया। तो मैं यही सोच रही थी कि देखिए ये सारा माशरा कलेक्टिवली इसके अंदर, इस जुर्म के अंदर शामिल हो जाता है कि जब इस बंदे की साइकी यहाँ तक पहुंची कि वो एक बच्ची के ऊपर, जो कि एक आसान उसको शिकार मिला, उसके ऊपर उसने झपटा मारा, एक दरिंदा बन गया। उसको दरिंदा बनाने के लिए कितनी चीजें पीछे होती हैं, कितनी चीजें देखने की, सुनने की, आवारगी और बाहर जो बेराह रवि है और जो ऐसी चीजें हैं, उसने वो सब ने थोड़ा थोड़ा अपना, एक दिन में नहीं कोई ऐसा हो जाता और ना कोई पैदा होते ही कोई दरिंदा होता है, लेकिन वो दरिंदा बन जाता है, वो एक वैशी बन जाता है, एक जानवर बन जाता है जिस वक्त के वो ऐसी चीजों से एक्सपोज्ड रहता है, और उसके बाद एक दिन वो ये कदम उठा लेता है। तो देखिए हमें जब ऐसी चीजों पे दुख होता है ना, तो हमें ये सोचना भी चाहिए कि कोई आज को अगर मुझे देखेगा तो हो सकता है मेरे ऊपर ना हाथ डाल सके, लेकिन किसी और मासूम के ऊपर हाथ डाल ले, यानी उसके जो जज्बात को अगर मेरी वजह से इश्तियाल हुआ, मेरी वजह से किसी की नजरें खराब हुई, मेरी वजह से किसी के दिल में ख्यालात बुरे पैदा हुए, तो मैंने भी तो एक अपना किरदार अदा किया है ना। तो इसलिए इसकी बड़ी हिकमत को समझा करें, सिर्फ छोटी बातों को नहीं कि बस मैं अच्छी लग जाऊं जी, तो सिर्फ 2 मिनट की तारीफ के लिए कि लोग कह दें कि तुम बड़ी खूबसूरत लग रही, क्या इससे मिलेगा? अगर आप औरतों में ही खूबसूरती अपनी तारीफ करवाना चाहती तो उनके सामने आप जरूर जीनत का इजहार कर लें, लेकिन क्या मिलता है इससे कि आदमी आपकी तरफ नजर उठा के देखें? इससे हमें क्या हासिल होता है, जबकि हम ये नहीं चाहते कि हमारा शौहर किसी और को देखे। कोई औरत दुनिया में नहीं ऐसी जो चाहेगी कि उसका शौहर दूसरी औरतों को देखे, कभी भी नहीं चाहते, लेकिन खुद दूसरों के शौहरों के लिए जीनत करके चले जाएं, ये क्या सही है? अगर आप ऐसी मजलिस में हैं जहां पे आप दूसरों के लिए फितना बन रही हैं, तो आपके शौहर के लिए भी कोई औरतें फितना बन रही होंगी जरूर, लिहाजा इस चीजों से परहेज करें और समझ से काम लें। अल्लाह ताला की आयात में बहुत बड़ी हिकमत है और वो बिगर पिक्चर में आपको समझ आती है। ये छोटी छोटी बातें शायद, ये मैं तो हिकमत उस तरह से बयान भी ना कर सकूं। अल्लाह ताला के पास जो हिकमत है ना, वो उसी हिकमत की बिना पे उसने ये अहकामात दिए हैं। अल्लाह ताला की कोई बात आप भी मानते हैं कि हिकमत के बगैर नहीं है, फिर हम ये क्यों सोच लेते हैं कि नहीं मेरे से कुछ नहीं होता, मेरे करने से, मैं अगर बेपर चली जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, और उस वक्त हम फौरन सोच रहे थे मैं कौन सी इतनी हसीन हूं कि लोग मुझे देखें, कोई नहीं देखता। आपको क्या पता, आपने सबकी आंखों की गारंटी ली हुई है। लिहाजा इन चीजों को जिंदगी से निकालें और तौबा करें। आगे आज की जो आयात है ये बहुत समझने वाली है, इसके लिए आपका अटेंटिव होना बहुत जरूरी है, खास तौर पे आयत नंबर 35। इसमें बहुत कुछ लिखा भी गया और अगर आप खुद भी तफसीरों में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद समझ में नहीं आएगी। ये आयत आयते नूर कहलाती है, इस नाम से मशहूर है। और थोड़ी मुश्किल है समझने में, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको आज कोशिश करेंगे कि हम अच्छे तरीके से समझ लें। आयत नंबर 35 सूरह नूर। अल्लाह नूर अस्समावाती वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमानों और जमीन का। अब पहले तो इस आयत के इस टुकड़े को समझना जरूरी है कि ये क्या माना देता है कि अल्लाह नूर है आसमानों और जमीन का। क्यों? इसलिए क्योंकि ये बात लेके बाद लोगों ने बहुत ही गुमराहकुन अकायद अपने कायम किए, लेकिन हम देखते हैं इमाम इब्ने कयीम को, वो जो इमाम इब्ने तैमिया के शागिर्द थे, उन्होंने इसकी तफसीर क्या की है? उन्होंने इसकी तफसीर, तीन तफासीर उन्होंने की हैं जो आप लिख लें। नंबर वन कि अल्लाह ताला ही के से उसके जरिए से उसकी तरफ से ही हिदायत मिलती है। अल्लाह नूर है आसमानों जमीन का, यानी अल्लाह ही सोर्स ऑफ हिदायत है। ठीक है, और कई जगह कुराने पाक में इसकी दलील मिलती है कि जैसे युखरिजुहुम मिना तुलुमाती इलन नूर, अल्लाह ताला निकालता है उनको अंधेरों से नूर की तरफ। तो वो अंधेरे कौन से? गुमराही के। और नूर क्या है? हिदायत। तो अल्लाह हिदायत देने वाला है। जितनी आसमानों में हिदायत है और जमीन में हिदायत है, वो अल्लाह की तरफ से। सूरज चल रहा है, उसको एक हिदायत दी हुई है, अल्लाह ताला ने दी हुई है, वो खुद से नहीं पा सकता। ठीक है, चांद को, सितारों को, जमीन के ऊपर जितनी मखलूक है, उन सब की हिदायत अल्लाह ही की तरफ से। तो अल्लाह ताला इंसान को भी हिदायत का नूर अता फरमाता है। नंबर टू इसका माना है कि फिजिकल जो रोशनी है, हिस्सी रोशनी, ये जितनी रोशनी आपको नजर आ रही है वो अल्लाह ही की तरफ से है। इस जहान में ना सारी रोशनी अल्लाह ही ने पैदा की है। ठीक नंबर थ्री कि हम इस आयत को ऐसे ही ले लें जैसे एज इट इज इसके अल्फाज हैं कि अल्लाह नूर उस समावाती वल अर्थ। वो कैसे है नूर, ये हम नहीं जानते। बस जैसे वो समी है, बसीर है, इसी तरह वो नूर भी है। बस इतनी सी बात। ठीक है, ये तीनों उन्होंने इसकी तफासीर की है। अल्लाहुम्मा अंता नूर उस समावाती वल अर्द, ये वाली पूरी एक दुआ है ना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के वक्त उठते थे तो पढ़ते थे। और ये हमें, जो मैं अभी आपको एक बात करूंगी, अगर आपको समझ आई तो ठीक है, अगर नहीं समझ आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप इस बात को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यूनान में फलसफी थे जिनका ये तसव्वुर था वहदतुल वजूद का। वहदतुल वजूद का अकीदा जो है, वहदत यानी एक, और वजूद, वजूद जो हम उर्दू में भी बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने बाद में मुसलमानों ने भी, मामून रशीद के दौर में मुसलमानों ने जब उनकी किताबों की ट्रांसलेशंस हुई यूनानियों की, तो उनसे यही अकीदा बाज मुसलमानों ने ले लिया, और वो अपनी इस अकीदे का की दलील जो है वो यहां से देते हैं। अल्लाह नूर उस समावाती वल अर्द के, अल्लाह नूर है आसमानों जमीन का। तो वो कहते हैं जैसे सूरज और धूप अलग अलग चीज नहीं है, जो सूरज की रोशनी है वो सूरज से जुड़ी हुई है, एक ही है। तो इसी तरह ये जितनी कायनात में रोशनी है ये भी अल्लाह ही है। ये वहदतुल वजूद का अकीदा है कि सारी कायनात जो है ना वो अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह का ही हिस्सा है। ये एक सूफियाना अकीदा है। तो वो कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी नजर आता है ना, वो अस्तग़फिरुल्लाह खालिक के हकीकी की मुख्तलिफ शक्लें हैं। हालांकि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, कुरान और हदीस में इसका कोई हवाला नहीं मिलता। और लेकिन जो मुस्लिम सूफिया में बहुत बड़ी एक ये मसला है कि वहदतुल वजूद के अकीदे को वो वैलिड समझते हैं, ये उनका कोर अकीदा है। इकबाल की लानी लिखते हैं कि बाज लोग ये अकीदा रखते हैं कि इंसान इबादत और रियाजत के जरिए, इबादत कर करके उस मुकाम पे पहुंच जाता है कि उसको कायनात की हर चीज में ही अल्लाह नजर आने लगता है, या वो हर चीज को अल्लाह की जात का हिस्सा समझने लगता है। इस अकीदे को वहदतुल वजूद कहा जाता है। ठीक है, और इंसान इबादत में तरक्की कर करके वो कहते हैं अल्लाह की जात में मर्ज हो जाता है, मुदगम हो जाता है, और वो दोनों यानी खुदा और इंसान एक हो जाते हैं। इसको फना फिल्ला कहते हैं, अल्लाह में ही फना हो जाता है, अस्तग़फिरुल्लाह। और इबादत और रियाजत में मजीद तरक्की से इंसान का दिल इतना साफ हो जाता है कि अल्लाह की जात खुद इस इंसान में दाखिल हो जाती है, जिसको हलूल कहा जाता है। अब ये जो फना फिल्ला, वहदतुल वजूद, हलूल, ये थोड़ा थोड़ा फर्क तो है इसमें, लेकिन बात एक ही है, और वो ये है कि इंसान अल्लाह की जात का जुज है और हिस्सा है। और ये अकीदा हर जमाने में किसी ना किसी शक्ल में मौजूद रहा है। हिंदुओं के अंदर अकीदा अवतार, बुद्ध मत के अंदर अकीदा निर्वाण, और जैन मत के अंदर बुत परस्ती, इन सब के अंदर यही वहदतुल वजूद का अकीदा है। तो वो कहते हैं इंसान चिल्ला काटता है और रियाजतें करता है, वो इस मुकाम पे पहुंच जाता है कि इसे कायनात की हर चीज में अल्लाह नजर आने लगता है, बल्कि वो हर चीज को अल्लाह की जात का हिस्सा समझने लगता है। ठीक है, तो हर चीज अल्लाह है, यानी आप ये जो भी दरख्त है, बाग है, पानी है, जो भी है, ये सब अभी खुदा है। तो ये एक बातिल अकीदा है, अल्लाह ताला का किसी मखलूक में उतर आना। ये मंसूर हल्लाज का भी यही अकीदा था ना, आपने अगर नाम सुना है, नहीं सुना तो कोई मसला नहीं। तो यानी वहदतुल वजूद क्या है बेसिकली, ये खालिक और मखलूक को जुदा नहीं है, वो एक ही चीज है। ये जितनी मखलूक है ना, वो भी खुदा ही है, खुदा का एक हिस्सा ही है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये नूर है जो आसमान, और अल्लाह जो है ना वो नूर है आसमान और आसमानों और जमीन का। तो ये जो नूर है ना, ये अल्लाह है, अस्तग़फिरुल्लाह, ये नूर अल्लाह ताला का जो नूर है। हालांकि यहाँ पे मैं आपको तीन बातें कहूंगी कि जिससे पता चलता है कि ये अल्लाह ताला का जाती नूर मुराद नहीं है, जाती नूर नहीं है ये। देखें, जब अल्लाह ताला के जाती नूर की बात होती है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मेराज पे गए थे तो पूछा गया कि आपने अल्लाह को देखा, तो फरमाया नहीं, नूर है वो, मैं उसको कैसे देख सकता हूँ। और ये भी हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का नूर हिजाब है, हिजाब इसका जो हिजाब है वो नूर है, ये समझ लें आप। तो फरमाया कि जो अगर वो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो अपना हिजाब खोल दे, तो जहां तक उसकी निगाह जाए हर चीज जल जाए। तो फिर अल्लाह ताला का जाती नूर कैसे हो सकता है ये? ठीक है, उसका जाती नूर तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कि वरना तो हर चीज जल जाती। ये तो उसका अपनी मखलूक के ऊपर रहमत है कि वो अपना हिजाब नहीं उठाता, और अल्लाह ताला जन्नतियों को फिर अपना दीदार कराएगा तो उनको वो ताकत देगा कि वो उसको देख सके। हमें हदीस से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह सोता नहीं और उसको ये जेब नहीं देता कि वो नींद ले, और उसका हिजाब नूर है, अगर वो अपना हिजाब उठा दे तो उसके चेहरे के नूर की तजल्ली जहां तक जाएगी हर चीज को जला देगी। ये मुस्लिम की हदीस है। फिर दूसरी बात ये कि यहाँ पे आगे आप देखेंगे नूर की मिसाल बयान की गई है, देखिए ना, मथल नूर ही, नूर की मिसाल बयान की। अगर ये अल्लाह का जाती नूर होता तो देखें अल्लाह ताला के नूर की तो मिसाल बयान ही नहीं की जा सकती, इसलिए कि लैसा कमिस्लिही शयून, अल्लाह ताला कैसे, अल्लाह नूर है वो कैसे है हम नहीं जानते, अल्लाह समी और अलीम है वो कैसे है, ये हम उस एक्सटेंट तक नहीं पहुंच सकते, हम उसकी मिसाल कैसे बयान कर सकते जब अल्लाह ताला ने फरमाया वो कोई उसकी मिसाल ही नहीं बयान कर सकता। फिर हम ये देखते हैं कि उस इसका एक और बात है कि यहां पे इसका फिर मतलब ये है कि अल्लाह नूर वाला है, क्योंकि अरबिक में इस तरह की बात की जाती है जब किसी को कहना हो ना, जैसे कि जईदुन अदलुन, ठीक है, जैद अदल वाला है, तो अल्लाह वो नूर हो, अल्लाह नूर वाला है, इसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए समझने में। तो अरबिक में तो इस तरह कहा जाता है नूर वाला है, मतलब है कि उसने नूर पैदा किया है। तो यहाँ पे एक माना यह कि अल्लाह ताला रोशन करने वाला है, नूर देने वाला है आसमानों को और जमीन को। किस तरह का नूर? हिसी नूर भी जो फिजिकल भी है, जितना नूर आप देख रहे हैं इस दुनिया के अंदर, जितनी रोशनी है वो अल्लाह ताला ने ही पैदा की है, और मानवी नूर भी, और यानी मानवी नूर मतलब हिदायत का नूर, ईमान का नूर, इल्म का नूर, बसीरत का नूर, ये भी अल्लाह ताला ही अता फरमाता है, और हिदायत का नूर भी अल्लाह ही ने आसमानों और जमीन को दिया। तो दोनों तरह के नूर अल्लाह ताला ने दिए हैं, हिस्सी भी, फिजिकल भी और मानवी भी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया मिन जुलुमाती इलन नूर, तो उसमें भी नूर का वर्ड आता है, लेकिन उसमें आप रोशनी का नहीं माना लेते, अंधेरों से रोशनी में ले आया का मतलब है कि गुमराही से अल्लाह ताला निकाल के हिदायत की तरफ ले आया, और देखिए हम वैसे भी तो आम जिंदगी में बात करते हैं ना, कि तुमने मुझे अंधेरे में रखा हुआ था, तो अंधेरे का मतलब ये नहीं कि किसी डार्क रूम में बंद किया हुआ था, मतलब है कि तुम मुझसे मेरी बात मेरे से ये बात छुपाई भी थी, यानी मुझे इस चीज से रोशनास नहीं किया था। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ही नूर दिया हुआ हर चीज को, ये मतलब न हरगिज नहीं है अस्तगफिरुल्लाह कि अल्लाह की जात है जो आगे बयान की गई है जिसकी मिसाल। ठीक है, मसलु नूरी ही, मिसाल उसके नूर की, अब ही की जमीर किस तरफ जा रही है, इसके अंदर भी दो तावीलें की गई हैं, यानी एक ये कि नूरी ही में बाज ने कहा कि लफ्ज अल्लाह ही है, यानी अल्लाह की हिदायत जो जो अल्लाह ताला हिदायत देता है उसकी मिसाल, उस नूर की मिसाल, यानी नूरे हिदायत की मिसाल। अल्लाह मुराद है ही से, कि अल्लाह के नूर की मतलब है अल्लाह की हिदायत की मिसाल ऐसी, और बाज ने कहा नूर ही से मुराद ही का मतलब मोमिन है, कि मोमिन के नूर की मिसाल कैसी है वो बताया गया। ठीक है, तो दोनों आपको बात समझ आ गई कि मिसाल अल्लाह ताला जो हिदायत देता है ना, उस हिदायत की मिसाल, नूर समझ लेना हिदायत है, तो मिसाल अल्लाह की हिदायत की क्या है वो आगे दी गई, या मिसाल मोमिन के नूर की, यानी मोमिन को जो हिदायत मिलती है अल्लाह की तरफ से उसकी मिसाल, दोनों एक ही बात हो गए। ठीक है, तो इंसान की तरफ भी ये जमीर हो सकती है और अल्लाह की तरफ भी। अच्छा, अब कैसी मिसाल है, का मिश्कातिन फीहा मिसबाह का मानिंद, जैसे मिश्का, मिश्का कहते हैं ताक को, ताक क्रेविस जिसको कहते हैं, दीवार के अंदर वो एक ओपनिंग सी होती है ना, जिसके अंदर जैसे शेल्फ सा होता है, या जिसके अंदर लोग चीजें भी रख लेते हैं, या पुराने जमाने के अंदर ये जो चराग होते थे उसके अंदर रखे जाते थे, ताकि तीन तरफ से वो प्रोटेक्टेड रहे, उसको कोई हवा बुझा ना दे, और रोशनी भी उस वजह से फैलती है, अगर आप उसको बाहर रखेंगे तो फिर नहीं रोशनी फैलेगी, जब आप उसको ताक में रखते हैं ना तो फिर रोशनी फैलती है, एक तरफ से होके निकलती है। फिहा मिसबाह, इस ताक के अंदर, इस शेल्फ जो, या जो इस तरह से होता है ना मेहराब सी बनी होती है, उसके अंदर एक मिसबाह है, मिसबाह नाम भी रखते हैं लड़कियों का, तो मिसवा का मतलब क्या होता है, चराग, तो चराग उसके अंदर एक रखा हुआ है। ठीक है, अल मिसबाह फी जुजाजा, मिसबाह जो है वो जुजाजा में है, वो चराग जो है ना इसके ऊपर जुजाजा है, वो अंदर है, चराग अंदर होता है, आपने देखा उसके इर्द गिर्द चारों तरफ शीशा होता है, तो वो शीशे में है, शीशे के फानूस में है, और आप देखते हैं कि आपके घरों में अगर शैंडलियर कहीं हो तो वो जो बल्ब होता है वो तो वही होता है, लेकिन जब शैंडलियर खूबसूरत हो ना तो फिर उस बल्ब की रोशनी कितनी खूबसूरती से निकलती, सारा कमाल ही उन शीशों का होता है। ठीक है, तो वो ये वाला शीशा कैसा है, अजुजाजा तो कअन्नहा कौकबुन दुर्रिय, ये जुजाजा कैसा है, ये फानूस कैसा है, गोया के एक तारा है चमकता हुआ, ये इतना खूबसूरत है ये जुजाजा, ये इतना खूबसूरत, यानी शीशा है, क्रिस्टल है, फानूस है, एक चमकते हुए तारे की तरह। ठीक है, पहले यहां तक इसको देख लेते हैं, आप दो डायग्राम्स बना लें, एक ताक बना लें जैसे वो क्रेविस होता है जिसमें मेहराब सी होती है, जिसके अंदर चराग रखे जाते हैं, उसके अंदर आप एक ड्राइंग बना लें, एक चराग की और उसके ऊपर शीशा है। ठीक है, दो ऐसे बना लें। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ पहले यहां तक, ताकि फिर आपको आगे समझ आ जाए। अब एरोज लगा दें, अगर आपने बना लिया एरोज लगाएं, आप जहां पे आपका वो है ताक है ना, ताक, तो उस ताक को जो मिश्का है, उस मिश्का को आप एरो लगा के उसके ऊपर लिखें मोमिन का सीना, मोमिन का सीना, अगर आप सीने की भी, अगर आप रिब केज की कभी शक्ल देखें तो वो भी इसी तरह की होती है, ऊपर से ऐसे यानी कम उसका होता है, और नीचे जाके फैल के जाके ऐसे खत्म होता है। इसके अंदर मिसबाह है, वो जो चराग है ना, चराग, उसको आप लिखें नूरे हिदायत या नूरे फितरत, ये लिखते हैं, ठीक है। अब वो नूरे फितरत है और जो शीशा है उसको आप लिख दें दिल। अच्छा, दूसरे डायग्राम में भी आप ऐसे ही करें कि आप अंदर लिखें बाहिर ताक लिखें, आपके ये सीना है, और अंदर लिख दें जहां पे क्रिस्टल है उसका जो शीशा है उसको आप लिख दें कि ये माहौल है, माहौल सराउंडिंग, और अंदर जो चराग है मिसबा है उसको लिख दे ईमान, ईमान हिदायत। या फिर मैं आपको समझाऊंगी इंशाल्लाह, अब आपको आराम से समझ आ जाएगी। यानी ये मोमिन का सीना है, जो मोमिन के नूर की मिसाल दी गई है ना, कि मोमिन के पास जो हिदायत है वो किस तरह से है, वो इस तरह ही है। इतनी खूबसूरत मिसाल है, और आप जब इस आयत की तिलावत भी सुनते हैं ना तो इतना लुत्फ आता है, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी मिसाल है कि मोमिन जो है उसके सीने की मिसाल ऐसी है कि उसके अंदर, पहली वाली को देखें, पहले डायग्राम को, उस सीने के अंदर एक दिल है और उस दिल के अंदर ईमान जल रहा है। ये अल्लाह ताला ने फितरी में जो उसकी डाला है ईमान, जो एक फितरी तौर पे होता है ना, आप देखते हैं कई लोगों को सुभान अल्लाह अभी उनको हिदायत नहीं भी मिली होती, लेकिन अंदर एक हिदायत की तलब, एक तड़प, एक इसकी क्रेविंग, इसकी तलब एक होती है कि मुझे कहीं से हिदायत मिल जाए, वो उसके अंदर होती है, ठीक है। और जो शीशा है वो दिल है। अब दिल, ये जो शीशा है ना, वो इतना चमकदार है, इतना जैसे कि एक रोशन सितारा। अब ये जितना चमकदार शीशा होता है ना, आप देखते हैं उतनी ही रोशनी फैलती है, ठीक है। और जितना शीशा मैला हो, आप देखें, अब बल्ब भी तो देखे ना, वो भी तो शीशे के अंदर होता है ना, उसके वो तो अंदर होता है, जो उसकी रोशनी की चीज होती है वो तो अंदर होती है, उसके बाहर शीशा क्यों लगाया जाता है, ताकि ज्यादा इसकी रोशनी फैले। अगर आप शीशे को तोड़ देंगे तो वो अंदर वाला कुछ भी रोशनी फैलेगी ही नहीं कहीं। तो सुभान अल्लाह, इसका दिल ऐसा होता है, ऐसा शफाफ होता है कि रोशनी हर तरफ फैल जाती है। और ऐसे ही दिल रोशनी को फैलाने का और उसको समेटने का अपने अंदर वो रखते हैं एबिलिटी, क्योंकि वो साफ है। आप देखें, अगर दिल साफ ना हो तो क्या होगा, वो रोशनी कभी फैल ही नहीं सकती। इसी वजह से आप देखते हैं कि बाज दफा लोगों को कुरान का इल्म भी मिल जाता है, उनकी रोशनी जो ये नूर है ना, ये हिदायत है, उनकी जिंदगियों में क्यों नहीं झलकता, क्यों नहीं वो आगे दूसरों तक पहुंचा सकते, इसलिए कि उनका शीशा मैला है, दिल है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए तो सारा जिस्म ठीक हो जाए, अगर वो खराब हो जाए सारा जिस्म खराब हो जाए, और वो दिल है। दिल का आईना अगर साफ जितना ज्यादा होगा, उतना ही चमक और ज्यादा बढ़ेगी, और ज्यादा बढ़ेगी ये हिदायत, और ज्यादा बढ़ेगी, उतनी खैर बढ़ती जाएगी, सुभान अल्लाह। इसलिए जरूरी है कि ईमान कबूल करना और इसको आगे पहुंचाना या अपनी जिंदगी में ढालना, इसके लिए जरूरी है कि दिल जो है वो पाक साफ हो। देखिए ना, आपने अगर दूध भी डालना हो तो बर्तन को साफ करते हैं तो दूध डालते हैं, गंदे बर्तन में आप कभी खाना नहीं डालते, ताकि आपको होगा कि खाना भी खराब हो जाएगा, क्योंकि बर्तन गंदा है। आप बर्तन को कई दफा धोते हैं, दिल को भी तैयार करना पड़ता है हिदायत के लिए। अगर दिल तैयार नहीं है ना, तो हिदायत का पानी इसमें डाल भी देंगे तब भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो दिल उसको उसमें सलाहियत ही नहीं है कि इसको समेट सके, इसको प्रैक्टिस में ला सके। लिहाजा ये है मरकज, ये है वो सेंटर पॉइंट जो इस रोशनी को लेता है और उसको ढाल लेता है, इसको इसको फैलाता है। यही सारे आपके जिस्म, आपके माहौल, आपके इर्द गिर्द, आपकी जिंदगी के अंदर, ये दिल अगर पाक साफ होगा तो ये फैला देगा हर जगह उस रोशनी को। ठीक है, तो ये हिदायत कबूल करने का जो जज्बा है ना, अंदर अंदर है वो उस दिल के अंदर है वो जो क्या है मिसबाह, वो हिदायत को कबूल करने का जज्बा है। वो जज्बा अगर है भी लेकिन दिल साफ नहीं है, और दिल में कीने, गीबतें, और दिल में हसद, और दिल में लालच दुनिया का, और दिल में और गुमराहकुन अकीदे, और दिल में और बिदात का शौक, और दिल में ऐसी चीजें हैं ना, तो फिर ये दिल धुंधला है। आप देखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इंसान गुनाह करता है, दिल पे एक काला धब्बा पड़ जाता है, फिर तौबा नहीं करता तो एक और नुक्ता पड़ जाता है, फिर वो तौबा नहीं करता, फिर गुनाह करता है, एक और नुक्ता पड़ता है, हत्ता कि दिल स्याह हो जाता है। आप खुद सोचे, स्याह दिल के अंदर एक ऐसा बल्ब है जो उसका शीशा सारा स्याह है, तो रोशनी कैसे फैलेगी? ठीक है, तो इसलिए इस रोशनी के लिए इस दिल को साफ होना जरूरी है। ठीक है, अब दूसरा दूसरी मिसाल पे जाने से पहले थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये जो मिसबाह है ना, ये जलता किससे है? एक जाहिर है, चराग को जलाने के लिए कुछ फ्यूल चाहिए होता है, तो ये किससे जलता है? युकदु मिन शजरति मुबारकतिन, ये जलता है एक दरख्त से जो बाबरकत है, जैतूनतिन, जैतून के दरख्त से। आपको जैतून का, आपको पता होगा कि इसका तेल भी कितना मुफीद है, और इस दरख्त की तो हर चीज ही मुफीद होती है, इसकी टहनियों से लेके पत्तों से लेके, यानी हर चीज की काम में आती है। ला शरकियतिन वला गर्बिया, ये ऐसा दरख्त है जो ना मशरकी और ना मगरबी है, यानी ऐसी इसकी पोजीशन है कि इसको हर तरफ से धूप पड़ती है, और जिसको हर तरफ से धूप पड़ती हो वो जैतून ऐसा होता है कि उसका तेल ज्यादा अच्छा होता है। यकादु ज़ैतुहा युदी वलो लम तमसा सुनार, करीब है उसका तेल रोशन हो जाए अगरचे आग उसको छुए भी नहीं। इतना साफ शफाफ ये तेल है, इतना साफ शफाफ है कि अगर इसको आग नहीं भी लगती तो वो ऐसा शफाफ है कि वो खुद बखुद रोशन हो जाए। ये मिसाल है कुरान की, अल्लाह की वही की। शजरत मुबारकन, मुबारक किसको कहते हैं? बरकत होती है खैरे कसीर, बहुत ज्यादा खैर। एक तो ये माना जिसको हम कहते हैं खैर ही खैर, और दूसरा बरकत के अंदर एक सेकेंड माना भी होता है कि वैसी खैर जो मुसलसल बढ़ती चली जाए, मुसलसल बढ़ रही है, उसको कहते हैं बरकत। ये आप कहते हैं ना, अल्लाह आपको बरकत दे, यानी खैर ही खैर डाल दे इसमें, और ये ऐसी खैर हो जो मुसलसल बढ़ती ही जाए। तो ये ऐसा जैतून है कि ये मुसलसल बढ़ रहा है, ये है उसका फ्यूल। अब आप देखें ये क्या है असल में, ये उस चिराग का फ्यूल है जिससे वो अंदर जो जो मिसबा है ना, जो चराग है, वो ऑलरेडी इतना साफ शीशे का के अंदर है, वो ऑलरेडी वहां पे, यानी हिदायत की तलब मौजूद है, हिदायत की तलब है। समझ ले एक गैस की तरह है, जैसे चूल्हे में आप गैस जलाते हैं ना, तो आप जब गैस ऑन करते हैं उसके बाद आप लाइटर करीब लेकर ही जाते हैं तो ढों करके एकदम भक्का होता है और तेज जल पड़ता है, राइट? तो समझिए, उसके अंदर इतनी इस्तात है, इतनी उसके अंदर एबिलिटी है कि वो तैयार है बैठा हुआ। ये दिल के अंदर जो हिदायत है ना, इतनी ज्यादा, इतना तलब है, इतना शौक है, इतनी तलाश है कि मुझे हिदायत मिल जाए, आप देखते ना कई लोगों को नहीं भी अभी कुरान का क्लास में नहीं आते, अभी वो नहीं होता, किसी को दीन का इतना इल्म नहीं होता, लेकिन इतनी उनके अंदर खैर होती है, इतनी खैर होती है उनके अंदर, इतना उनको नेकी का उनके अंदर जज्बा होता है, भागते दौड़ते फिरते हैं, वो इतने प्यारे लोग होते हैं। तो वो बात है कि यानी वो बहुत अच्छे अंदर से ऑलरेडी है, उनके अंदर ऑलरेडी ईमान की वो इस्तात मौजूद है, एबिलिटी मौजूद है। अच्छा इधर से आप लेकर आए ऐसा तेल, तो बस एकदम से वो जल गया। वो तेल ही ऐसा है, वो तेल तो खुद इट सेल्फ इतना रोशन है कि वो तो उसको आग ना भी दिखाई जाए तो वो जलने को तैयार है, वो इतना क्लियर, इतना इतना प्योर है, वो ऐसा तेल है कि उसको आग नहीं भी दिखाते तो वो ऐसे लग रहा है कि ये खुद इतना चमकदार है कि ये खुद जलने को तैयार। ये कुरान है, ये कुरान है, ये तेल कि यानी उसके अंदर इतनी सलाहियत है कि आप किसी को साबित करें ना करें, वो अपना खुद सबूत है, वो अपने आप को खुद साबित करता है कि वो हक है, वो ऐसा है, वो खुद रोशन है, उसको किसी ने क्या रोशनी दिखानी, वो तो खुद रोशन है, इतना प्योर है वो। और ला शरकिया तिमला गर्बिया, उसके अंदर किसी किस्म की बायसेस नहीं है, किसी किस्म की यानी मिलान नहीं है कि कोई वेस्टर्न या ईस्टर्न हो, वो बिल्कुल बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड, बिल्कुल प्योर है, ठीक है। उसकी लोकेशन, ये दरख्त ऐसा है ना, लोकेशन मशरिक की है ना मगरिब की है, ये भी एक माना है, यानी उसकी लोकेशन इतनी जबरदस्त है। तो ये कुरान ऐसा है, ये किसी की तरफ भी इंक्लिनेशन ऐसे नहीं है कि वेस्टर्न ख्यालात को ज्यादा वो देता है या ईस्टर्न ख्यालात को देता है, ये बिल्कुल बैलेंस्ड है, तासुब से पाक है, ना मशरिकी ना मगरिबी, ठीक है। तो ये ऐसे दरख्त का भी फल भी बड़ा अच्छा होता है और तेल भी बड़ा अच्छा होता है। और जैतून के बारे में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है कि इसको खाओ भी और इसका तेल लगाओ भी और ये बहुत बाबरकत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसको बाबरकत कहा कि ये बाबरकत है जैतून जो है। तो ये कितने प्योर ऑयल से जलता है ये जो चराग है, अब ये प्योर ऑयल उसके ऊपर पड़ता है तो कैसे वो चराग जल पड़ता है और कैसे वो, क्योंकि उसका दिल ऑलरेडी इतना प्योर है तो वो तो नूरों नाला नूर हो जाता है, पहले ही नूर, ऊपर से नूर, नूर पे नूर, ठीक है, कि पहले ही उसके अंदर ऑलरेडी इतनी, उस बंदे के दिल के अंदर इतनी खैर थी, उसके ऊपर जब उसको कुरान का नूर मिल गया तो अब आप देखें कि फिर वो नूरों नाला नूर हो गया। आप देखें एक बच्चा, वैसे तो हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, इस्लाम पे पैदा होता है, अल्लाह ताला उसके अंदर, अल्लाह ताला ने हिदायत रखी होती है, ईमान रखा होता है अल्लाह पे, मगर अब देखे ना जब दुनिया के अंदर आता है, कभी माहौल, कभी हालात, कभी ऐसी चीजें जहां पे वो पला बड़ा होता है, कभी उसके वालदेन, ये सब चीजें मिलजुल के उसके अंदर वो जो हिदायत का वो होता है ना, बाज दफा उसको मद्धम कर देते हैं और वो इंसान फिर हिदायत को पाने का हरीस नहीं रहता, उसकी जो नूरे फितरत है ना वो मसख हो जाता है, वो करप्ट हो जाता है। और इस वजह से फिर वो जब नूरे कुरान भी अगर उसके पास आता है तो कोई फायदा नहीं होता, वो जो तेल आया है ना उससे वो फायदा नहीं हासिल कर सकता, इसलिए क्योंकि इसके अंदर से वो तौफीक ही नहीं है ना, अंदर वो तलब ही नहीं है, तो फिर कुछ फायदा ही नहीं होता। एक माना इसका ये भी किया गया है कि ये जो मिश्का है ये नबी अलैहिस्सलाम का सीना है, ठीक है, ये ताक है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना है, और जो जुजाजा है ना, ये जो चराग है, जो शीशा है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब है, और जो मिसबा है, जो चराग है, ये नबुवत है, नबुवत यानी ये जो शीशे के अंदर आपके दिल के अंदर नबुवत का चराग जल रहा है, ठीक है। और अगर इसके पास वही इलाही नहीं भी आती तब भी इसके अंदर खुद इतना रोशनी का सामान है इतना रोशनी का सामान था। देखे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, आपका अखलाक, आपकी जिंदगी इटसेल्फ इतनी रोशन थी, आपकी नेकी, उसके ऑन टॉप ऑफ इट वही इलाही आ गई, तो नूर और नाला नूर हो गया। समझे बात? अल्लाह अकबर। तो ये वो नूर है कि इंसान को जब ये नूरे हिदायत मिल जाता है तो तब वो उसकी जिंदगी बदल जाती है, मगर उसके दिल का जो शीशा है वो साफ होना चाहिए। दूसरी मिसाल में मैंने आपको लिखवाया कि ये जो शीशा है ये माहौल है, यानी इंसान को जब ये कुरान का नूर मिलता है उसके अंदर पहले से ही इस्तेदाद है, कैपेबिलिटी है नूर को एक्सेप्ट करने की, तो वो जब उसको ये मिलता है और माहौल भी साजगार मिल जाता है तो उसकी रोशनी कहाँ तक फैलती, फिर वो उसकी अपनी जात तक नहीं सिर्फ रहती, फिर इर्द गिर्द हर तरफ उसकी रोशनी फैल जाती। और ये शीशा प्रोटेक्शन भी है, देखे ना, जो उसका माहौल है वो फिर उसको इस पे जमने में भी मदद देता है कि उसका नूर जलता रहे। अल्लाह ताला फरमाता है सुबहान अल्लाह, ये हर एक को लेकिन नहीं मिलता, यहदिल्लाहु लिनूरि ही मन यशा, अल्लाह ताला अपने नूर की तरफ रहनुमाई करता है। ली का माना इला वाला है, इला कि अपने नूर की तरफ अल्लाह ताला रहनुमाई करता है जिसको चाहता है, यानी ये अल्लाह की मशीयत के ऊपर है। और उसकी मशीयत जो है ना, उसका चाहना जो है, उसकी हिकमत के मुताबिक है। मशीयत इलाही की कैद लगाई गई है इस नूरे फितरत के लिए नहीं है जो हर इंसान में रखा, बल्कि नूरे कुरान के लिए, कि ये कुरान जो है ना, ये इसके जरिए हिदायत उसको मिलती है जिसको अल्लाह चाहता है। यानी ऐसे खुश नसीब लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला चूज करता है कि उनको तौफीक देता है, बिला तौफीक ये नहीं मिलता नूर। ठीक है, नूरे हिदायत तो अल्लाह ने सबके अंदर रखा, मैंने आपको बताया ना, वो करप्ट हो जाता है आपके हालात, आपके ब्रॉटअप, आपके पेरेंट्स, आपके उस, आप एक एक मुशरिक के अंदर भी नूरे हिदायत तो था लेकिन वो करप्ट हो गया। ठीक है, इतनी उसकी शख्सियत मसख हो गई कि वो उस चीज को भूल ही गया। तो कुरान का नूर यहाँ पे मुराद है कि वो वाली तो अल्लाह ताला ने सब में रखी है, लेकिन ये कुरान का नूर है ना, ये जो तेल है ये हर एक को नहीं मिलता, ये जिसको अल्लाह ताला चाहता है, जिसके लिए अल्लाह ताला इरादा करता है। तो आपको आज मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने आपके लिए इरादा फरमाया कि वो आपकी रहनुमाई करे इस नूर के जरिए। अब आप में से जिन लोगों को माहौल अच्छा होगा, जिन लोगों के दिल साफ होंगे, उनके लिए तो ये नूर नाला नूर हो जाएगा। जब ये भी मिल जाए, नूर हिदायत भी अंदर है, प्योर है अंदर से, शीशा भी अपना दिल का साफ है, तो नूर नाला नूर हो गया। और जिनके लिए ऐसा नहीं है, उनके लिए फिर ये नूर जो बाहर का है वो भी उस तरह से काम नहीं करता। अपने अंदर ही सलाहियत नहीं, देखे आप आग दिखाते जाएं, आपके चूल्हे के अंदर गैस ही नहीं आ रही तो कैसे जलेगी? ठीक है, लेकिन अगर उसमें गैस होती ना, ये उसके अंदर तलब, इस्तताअत, वो चाहता है कि पकड़ ले आग को, ये जलना चाहता है, तो फिर वो जू ही उसके करीब वो तेल आया, वो तो तेल भी ऐसा इतना वो रोशन है, तेल आया और आग आई तो वो फौरन जल पड़ा। लिहाजा एक तो अपने दिलों को पाक साफ करें, आलूदा ख्यालात इनसे बचाएं, इस गंदे दिल के अंदर पाकीजा चीज नहीं ठहर सकेगी। जब वो हर चीज से खाली हो जाए ना, पहले खाली करें। आप अपने घर की सफाई कैसे करते हैं? जब बहुत डीप क्लीनिंग करनी होती है तो कैसे करते हैं? ऊपर ऊपर से कपड़ा नहीं मारते, आप चीजों को हटाते हैं, फिर उनके नीचे से भी साफ करते हैं, ऊपर से भी साफ करते हैं, फिर चीजों को रखते हैं वापस। ठीक है, तो जब ये दिल हर चीज से खाली हो जाए, इसमें कुछ ना रहे सिवाय अल्लाह के, कोई और ख्वाहिश नहीं, कोई और आरजू नहीं, अल्लाह ही की जात हो, किसी का खौफ नहीं, किसी से उम्मीद नहीं सिवाय अल्लाह के, जब ऐसे खाली हो जाए तो फिर इसको संवारना है। तो आप बर्तन भी साफ करने लगते हैं, भरे बर्तन को तो नहीं धोना शुरू कर देते ना, उसमें से चीज निकालते हैं फिर उसको साफ करते हैं, फिर चीज नहीं डालते। तो ये मिसाल है और ये बड़ी प्यारी मिसाल है, और अल्लाह ताला इस मिसाल से समझाता है कि मेरी हिदायत कैसी है और इस हिदायत के लिए तुम्हारे अंदर क्या जरूरी है। अंदर नूर की तलब हो तो अल्लाह ताला, हिदायत के नूर की अंदर तलब है तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे को फिर ये नूर अता फरमाता है। और आप देख लें फिर उसकी मिसाल ये बता दी कि अल्लाह के नूरे हिदायत कैसा है। अब जब ऐसा चराग जलेगा तो वो कितना खूबसूरत लगेगा, जिसका शीशा भी इतना शफाफ है, जिसके अंदर तलब भी थी और अब वो ऐसे तेल से रोशन हुआ, वो तेल भी इतना प्योर है। कुरान प्योर है ना, मुबारक है। तो ये बाकी तेलों की तरह नहीं, जैतून का तेल, इससे धुआं भी नहीं निकलता और इसकी आग भी जो होती वो भी शफाफ होती। तो स्पेशली जैतून की बात की गई, लिहाजा देखें आप। लेकिन इसका तेल निकालने में ना बड़ी एफर्ट लगती है, बड़ी मेहनत लगती है। तो कुराने पाक से भी जिसने फायदा लेना है तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, तब ये अंदर का चराग रोशन हो जाएगा। फिर आप देखेंगे इसकी रोशनी आपके वजूद को तो सरशार करेगी, आपके सारे माहौल को रोशन करके रख देगी, आपके इर्द गिर्द रोशनी हो जाएगी, अंधेरों से आप खुद भी निकल आएंगे और अपने इर्द गिर्द वालों को भी अंधेरों से निकाल लेंगे। तो ये है वो खैर और ये है वो हिदायत का नूर। इसकी आप तिलावत सुनिए ताकि हम इंशाल्लाह इसको और जज़ब कर सकें। तिलावत लगा।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء نار نور على نور نور على نور نور على نور يهدي والله بكل شيء